मेरे अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 19 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विमलेश राजपूत, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, किरण रावत, आप उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और विशाल कुमार, आप ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं। तो विमलेश, किरण और विशाल, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और न्यूज एनालिसिस में मैं तीन पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली खबर तो आपने यही सुनी दोस्तों की एक अच्छी खबर है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। दूसरी जो खबर थी वो विजय माल्या जी को लेकर थी कि उन्हें ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जमानत पर 4.5 करोड़ रुपया कुछ इसके जमानत पर उनको 3 घंटे बाद रिहा भी कर दिया गया, ये दूसरी खबर थी। और तीसरी खबर थी भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर के, तो इसमें जो खासकर सामान्य मानसून और विजय माल्या की जो बात है इसको लेकर मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा, डिटेल में कह लीजिए। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो इम्पोर्टेंट खबर है उस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, उधर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ब्रेक्जिट के बाद जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया, जब से तब से पूरी दुनिया में एक विचित्र किस्म की अफरा तफरी सी मची हुई है। न्यूज में ही आपने सुना कल कि ब्रिटेन में तो अब जल्दी चुनाव, 3 साल पहले चुनाव कराने के फैसले किए जा रहे हैं और उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, क्योंकि अब जब ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो अलग होने के लिए उसे फिर से एक पार्लियामेंट से सारी चीजें करानी पड़ेंगी, जो भी उसकी प्रक्रिया हो उनके अपने संविधान के तहत होगी। तो ब्रिटेन को लगता है कि ऐसी में एक बहुत ही मजबूत सरकार की जरूरत है, तो अभी से ही वो चुनाव 3 साल पहले चुनाव करा रहे हैं। उसका भी रीजन ब्रेक्सिट है। फिर आप ट्रंप को देखते हैं, अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बनकर के आए और उन्होंने नारा दिया था अमेरिका अमेरिकियों के लिए, अमेरिकन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही उन्होंने नारा दिया। वहां के लोगों ने उनका समर्थन किया, वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद ही उन्होंने अपने पहले ही भाषण में साफ ये कह दिया कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, अमेरिका के लोगों को नौकरी दीजिए और अमेरिकी सामान खरीदिए, यानी कि हम अपनी भाषा में इसे स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं, स्वदेशी का नारा उन्होंने दे दिया, ये अमेरिका ने किया। इसी लाइन पर अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाया जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं वह है वीजा 457, वीजा 457, उसको ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। अब आपको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन, 5 दिन पहले ही तो अमेरिका के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भारत होकर के गए हैं और जाने के बाद उन्होंने 457 वीजा, मतलब वीजा 457 इसका नाम है, 457 वीजा नहीं, वीजा 457। जैसे अमेरिका ने, आपको ध्यान होगा इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में बात भी की थी, H1B वीजा, इस पर प्रतिबंध लगाए थे, इसके कुछ नॉर्म्स कड़े कर दिए थे ताकि ये वीजा बहुत कम लोगों को मिल सके। इसी तरह से वहां एक वीजा 457 है जो विदेशियों को दिया जाता है और विदेशी उस वीजा के तहत आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो है उनको इस वीजा के तहत बाहर से जो लोग आते हैं तो सस्ते में लोग मिल जाते हैं काम करने वाले। अब जो वहां के प्रधानमंत्री हैं टर्नबुल, वहां के प्रधानमंत्री टर्नबुल, उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑस्ट्रेलियन जॉब्स ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो नौकरियां हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो काम हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए हैं और हम ऑस्ट्रेलिया के वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देंगे। तो आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन जॉब में इकोनॉमी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज में आपको कल्चर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं सिविल सर्विस के लिहाज से, वो ये है कि इसका मतलब है कि अभी तो कुल 25 साल ही हुए हैं वैश्वीकरण के, हम जब एंटर हमने किया है 1991 में हमने एंटर किया था वैश्वीकरण, विश्व पूरा विश्व एक है, और इस 25 सालों में अब मतलब जो विकसित देश हैं उनमें इस तरह के संकट दिखाई देने लगे हैं, और वो एक तरीके से यूं कह लीजिए कि अपने को विड्रॉ करने लगे हैं। जब आप इस तरीके से अपने देश में लोगों को आने के लिए रोकने लगेंगे, जब आप बाय अमेरिकन की बात कहेंगे कि अमेरिकी सामान खरीदो, तो बाहर से दूसरे देशों के सामान को भी रोकने लगेंगे, तो दूसरे देशों के सामान को रोक रहे हैं, दूसरे देश की सर्विसेज को रोक रहे हैं, तो किस नाम का ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक इसी दिशा में उठाया गया एक फिर से बहुत चौंकाने वाला चिंतनीय कदम है, ये आपके दिमाग में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पर हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और यह उसका ताजा तरीन उदाहरण है। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, और इससे रिलेटेड एक जो न्यूज है उसकी क्लिपिंग्स भी आज के क्लिपिंग उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर जो मानसून के सामान्य से जुड़ा हुआ बिंदु है। इसमें मैं मानसून को लेकर के आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं, उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए एक बात तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बल्कि आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि मानसून सामान्य है, तो मानसून सामान्य है कहने का क्या मतलब होता है? उसका सीधा सा मतलब होता है कि जब मानसून 96% से 104% तक हो, 100% तो परफेक्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 4% अगर कम है तो भी वो सामान्य होगा, और अगर 4% अधिक है तो भी वह सामान्य होगा, यानी 96 to 104, 10% के डिफरेंस की ये रेंज है, 8% की आप कह लीजिए रेंज ये है, वो तक सामान्य होता है। अगर 96% से कम है तो कम मानसून हो जाएगा, और अगर 104 से ज्यादा है तो अधिक मानसून हो जाएगा। दोस्तों आपने अगर दूरदर्शन की न्यूज सुनी हो तो उसमें आपने दिया हो, उसमें एक लाइन और मेंशन की हुई थी कि इस बार जो अल नीनो का प्रभाव है वो नहीं है, अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, और आप हो सकता है कि जानते भी हो, 2013 में तो बकायदे इस पर प्रश्न भी पूछा गया था ज्योग्राफी के पेपर में, मतलब प्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। देखिए दो तरह की धाराएं हैं, ये शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे, और मैंने देखा कि स्टूडेंट इसको लेकर के कभी कभी कंफ्यूजन भी उनमें हो जाता है। एक है एल नीनो और दूसरा है ला नीना, एल नीनो और दूसरा है ला, एल ए फिर है एन आई एन ए, ला नीना। जो एल नीनो है जिसकी चर्चा दूरदर्शन में थी वो बेसिकली गर्म पानी की धारा है, ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, जबकि जो ला नीना है ये ठंडे पानी की धारा है, कोल्ड धारा है, ये कोल्ड स्ट्रीम है और वो हॉट स्ट्रीम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंफ्यूजन होता है आपको तैयारी इस रूप में ही करनी चाहिए दोस्तों, जिनमें कंफ्यूजन होता है ना फिर आप उनको आमने सामने एक साथ रखें और बहुत इत्मीनान से पढ़ें और एक दूसरे से जोड़ करके समझने की कोशिश करें तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं केवल उसी मॉडल के तहत आपको ये बता रहा हूं और कुछ नहीं, अदरवाइज आप किताब में पढ़ भी सकते हैं, है तो मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूं अगर ये आपके काम आ सका तो। अब मजेदार बात है कि ये जो दोनों धाराएं हैं ये एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि ये दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पैदा होती है सामान्य तौर पर, दक्षिण प्रशांत महासागर, राइट। अब आपको चाहिए कि अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप दुनिया का नक्शा निकाल लें, साउथ पैसिफिक ओशन। अगर आप एटलस में देखेंगे या दीवार पर टंगे हुए नक्शे में देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपको जो भारत है वो एक तरफ दिखाई देगा, एक मतलब बिल्कुल ईस्ट में दिखाई देगा, और जो साउथ पैसिफिक ओशन है वो बिल्कुल वेस्ट में दिखाई देगा, यानी कि दोनों बहुत दूर दूर दिखाई देंगे क्योंकि आप फ्लैट में मैप पर उसे देख रहे हैं। और आपको देखना चाहिए, केवल मेरी बात मत सुनिए प्लीज, आप नक्शे में देखिए। और हम और ये जो अल नीनो, एल नीनो हो या ला नीना हो, ये पैदा साउथ पैसिफिक ओशन में होते हैं, दक्षिण पूर्वी प्रशांत, लेकिन हम साउथ पैसिफिक ओशन मान लेते हैं, यहां पैदा होते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि यार ये होता तो साउथ पैसिफिक ओशन में है, जो ला नीना और एल नीनो है, और भारत इससे बहुत दूर है, क्योंकि मानसून की वर्षा भारत में होती है, भारत और इधर साउथ ईस्ट एशिया वगैरह के देशों में होती है, आसपास के देशों में होती है, इसका इतनी दूर तक कैसे प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए। अब यहां कुल मिलाकर के एक सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि हम फ्लैट मैप में इसे देख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है। अब आप सच में अगर आप पृथ्वी के आकार को जानना चाहते हैं तो आपको ग्लोब में देखना चाहिए, ग्लोब जो होते हैं जिसमें वो 23.5 अंश उसको झुका हुआ भी दिखाते हैं पृथ्वी को। जब आप ग्लोब में देखेंगे तो फिर पता लगेगा कि अरे बाप रे, जो साउथ पैसिफिक ओशन है ये तो भारत के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि अगर आप अपने उस मैप को ही मोड़ दें, राउंड कर दें, गोल बना दें, तो आप देखेंगे कि इसका अंतिम छोर यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन वेस्ट का अंतिम छोर है और भारत को आप ईस्ट का अंतिम छोर है। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो वेस्ट ईस्ट एक में मिल जाएंगे ना गोल बनने के लिए, तो एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। इसका साफ मतलब हुआ कि साउथ पैसिफिक जो ओशन है इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश है जहां मानसून का प्रभाव पड़ता है वहां पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो नक्शे में इसकी क्लैरिटी है जो मैंने आपको तैयारी करने की पद्धति के आधार पर बताने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा इसके प्रभाव के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा और मैं अपने जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा मित्रों कि वर्षा कैसे होती है, जो विंड्स हैं वो कैसे कम दबाव क्षेत्र से अधिक दबाव क्षेत्र की ओर, क्या कहते हैं, अधिक दबाव क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलती हैं, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। क्यों कहीं कम दबाव का क्षेत्र बनता है, क्यों कहीं अधिक दबाव का क्षेत्र बनता है, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। इसकी कुंजी है टेम्परेचर। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो हवा है वो शुष्क हो जाएगी, शुष्क होने पर हल्की हो जाएगी, हल्की होने पर ऊपर उठेगी। जब वो हवा वहां से गायब हो गई तो वहां कम दबाव क्षेत्र बन जाएगा, वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अभी पूरे देश में गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हैं, तो गर्मी में खूब हवा ऊपर चलती चली जा रही, तो अब धीरे धीरे हमारे देश में कह लीजिए कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। लेकिन जो बगल के एरिया हैं, जो समुद्री एरिया हैं, आप देखिए कि हमारे एक तरफ इंडियन ओशन है, फिर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, ये सब है, यहां वाटर बॉडीज है, यहां अधिक दबाव का क्षेत्र है, क्योंकि हवा यहां की जो हवा उठ रही है ऊपर उसमें वाष्प है, पानी है, भाप है, सामान्य भाषा में मैं ये बात कर रहा हूं, यहां अधिक दबाव का क्षेत्र है। तो अधिक दबाव का क्षेत्र से हवाएं कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलेंगी, मतलब भारत की ओर चलेंगी, जैसे ही बरसात शुरू होगी तो वर्षा होने लगेगी, जून से वर्षा होने लगती है, राइट, ये सामान्य सिद्धांत। अब ये एल नीनो और ला नीनो क्या करती है, बस इसको देख लीजिए आप, सिंपल सी बात है, इसको अगर आपने समझ लिया तो अब इसको समझने में आसानी होगी। एल नीनो क्या है, गर्म पानी की धारा है, तो सीधी सी बात है। और ये फिर नक्शे में देखें कि ये जो पेरू है, पेरू एक देश है जो लैटिन अमेरिकी देशों में, उसके पैरेलल ये बहती है, दक्षिण साउथ टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ ये बढ़ती है, बहती है। तो जब एल नीनो क्या होता है कि जब सक्रिय होता है तो वहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां बढ़ जाएगा गर्म पानी की धारा से। तो पता लगा भारत में भी गर्मी के कारण टेम्परेचर ज्यादा है और वहां भी गर्मी के कारण टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि वहां टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर वहां कम होगा तभी तो वहां अधिक दबाव का क्षेत्र बनेगा। तो पता लगा वहां भी कम दबाव का क्षेत्र बन गया और हमारा जो कॉन्टिनेंट है वहां भी कम दबाव का क्षेत्र है, तो खत्म हो गया ना, फिर तो मानसून को बहने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि दोनों के दबाव में थोड़ा सा ही फर्क है, अगर थोड़ा सा फर्क है तो थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, सिंपल सी थ्योरी। ला नीना उसके बिल्कुल विपरीत है, ये ठंडी धारा है, इसकी जब वृद्धि हो जाती है, ये जब अपना असर दिखाने लगती है ये धारा, तो उस क्षेत्र में ठंडा तो है ही है, उसको और ठंडा कर देती है, यानी कि वो और ज्यादा अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो जितना ज्यादा अधिक दबाव का क्षेत्र बनेगा उतनी ही ज्यादा फिर वो ठंडी या वाष्प से भरी हुई आर्द्र हवाएं जिनमें पानी खूब मात्रा में है वो कम दबाव के क्षेत्र की ओर बहेंगी, यानी कि भारत की तरफ वो हवाएं बहने लगेंगी और वो खूब बहेंगी तो खूब बारिश होगी। यानी कि एल नीनो से अकाल पड़ता है, वो हमारे यहां सूखे का कारण बनती है क्योंकि हमारे यहां वर्षा कम होती है, मानसूनी हवाओं को आने से रोक देती है, सिंपल सा। जबकि ला नीना हमारे यहां बाढ़ का कारण बनती है, खूब बारिश होती है, जरूरत से ज्यादा बारिश होगी क्योंकि उनके पास खजाना खूब है, हवाओं के पास पानी का खजाना खूब है और वो हवाएं पानी के उस खजाने को ले लेकर के आ रही हैं और हमारे यहां लुटा रही हैं, खूब जम के लुटा रही हैं, तो हमारे यहां वर्षा ज्यादा हो जाती है। यानी कि जो एल नीनो है उसकी वजह से भारत में सूखा पड़ता है और जो ला नीना है उसके कारण भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। तो मित्रों, मुझे लगा कि चूंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है और अखबारों में लगातार इसके ऊपर आता भी रहता है, एग्जामिनेशन भी आता रहता है, प्री और मेंस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपसे बातें करनी चाहिए। मित्रों, अब तीसरी खबर विजय माल्या जी की रह गई है और विजय माल्या जी की इस खबर को आधार बनाकर इनफैक्ट मैं आपसे क्रोनिक कैपिटलिज्म के बारे में बात करना चाह रहा था, जिसे हम याराना पूंजीवाद कहते हैं। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि काफी पहले इस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन अब चूंकि उतना वक्त नहीं रह गया है कि इस पर मैं इत्मीनान से आपसे बात कर सकूंगा, तो इसके लिए दोस्तों अब माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत संभव हुआ तो हम इस पर कल बातें करेंगे। लेकिन एक बात जरूर यहां मैं कहना चाहूंगा कि विजय माल्या जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो भारत सरकार की अब इस नियत को, मैं कहूंगा नीति को नहीं, क्योंकि क्रोनिक कैपिटलिज्म के संदर्भ में कह रहा हूं, कि कहीं ना कहीं दर्शाती है कि सरकार अब काले धन को समाप्त करने के लिए बिल्कुल कड़े कदम उठा रही है। जो अवैध इस तरह के जो काम हो रहे हैं उनके खिलाफ वो अब कोई रियायत नहीं देगी, बैंकों का जो कर्ज लेकर इस तरीके से फिर वापस नहीं करते हैं उनके प्रति भी अब वो सख्त रवैया अपनाएगी, ये तो स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है। मित्रों, इस पर अब हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, बहुत सी क्लिपिंग्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, इसमें से एक क्लिपिंग्स के बारे में मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा जो बिजनेस स्टैंडर्ड का है, खासकर पीपीपी मॉडल को लेकर है। ये शुरू में काफी इसमें आंकड़े वगैरह दिए हुए हैं, आखिरी में जाकर के इसके जो तीन चार पैराग्राफ हैं, बिल्कुल आखिरी में के तीन चार पैराग्राफ सच पूछे तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे वहीं से पढ़ें, शुरू से पढ़ते पढ़ते जाएं, सामान्य तरीके से पढ़ें, लेकिन आखिरी के जो चार पांच पैराग्राफ हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पीपीपी मॉडल हमारे यहां अच्छे से काम करे इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो वो बात कही गई है और वही एग्जामिनेशन के लिहाज से आपके लिए उपयोगी है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मित्रों, अब मैं अपने सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसमें मुझे मनोरमा शर्मा जो न्यू दिल्ली से हैं उनका एक मेल मिला है जिसमें उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू में वो एक स्टूडेंट से मिली और उनके बारे में लिखा है, लेकिन थोड़े से मैं चाहूंगा मनोरमा जी कि अगर आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इसकी एक एक लाइन दो दो लाइन में मुझे एक लिस्ट सी भेज दें तो वो मैं स्टूडेंट को बता सकूंगा, वो ज्यादा उपयोगी होगा। मन्यू राय भी न्यू दिल्ली से हैं, वो भी यूपीएससी गए थे और वहां भी कुछ स्टूडेंट से उनकी मुलाकात हुई, तो एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि नहीं, पहले प्री की तैयारी करनी चाहिए फिर मेंस की तैयारी करनी चाहिए जब प्री में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये मन्यू मैं कहना चाहूंगा कि उन स्टूडेंट की अपनी राय हो सकती है, हो सकता है कि उन्होंने मेंस में ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हो जिसकी तैयारी उनकी पहले से ही बहुत अच्छी हो तो इसलिए उन्होंने उस नीति को अपनाया हो। और वैसे भी देखिए, प्री की तैयारी अगर आप जनरल स्टडीज की करते हैं तो अच्छे से तैयारी किए बिना तो बात बनती नहीं है, तो वो हो सकता है कि मिक्स तरीके का उनका व्यू हो, लेकिन उनका अपना व्यू है, उनको सफलता मिली है तो उसको हम उससे इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, सामान्य सिद्धांत के तहत ज्यादातर यही कहते हैं कि एक बार हमारी मेंस की तैयारी अगर हो जाती है तो प्री की तैयारी तो उसमें ऑटोमेटिक ही हो जाती है, ज्यादातर लोग यही बात कहेंगे। तो मित्रों, सभी को बहुत धन्यवाद और सभी के प्रति आभार, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं। चेतन प्रकाश वर्मा अलवर राजस्थान से हैं, सिमरनजीत सिंह लुधियाना पंजाब से हैं, अभिषेक चौधरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, अनुराग गुप्ता इंदौर मध्य प्रदेश से, सुमन कुमारी रामगढ़ झारखंड से, शैलेंद्र कुमार शीतलपुर उत्तर प्रदेश से, पूजा शर्मा जयपुर राजस्थान से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, खुशबू रघुवंशी रोशनी रघुवंशी गुना मध्य प्रदेश से, विजेंद्र कुमार पटना बिहार से, धीरज कुमार आप भी पटना बिहार से हैं, हेतराम प्रजापत जयपुर राजस्थान से, अली शेख मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, अभिषेक, सोनी और अंकित राय, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।